देवाय
नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। आप सबका स्वागत है श्री राधा गोविंद मंदिर इस्कान झांसी में प्रातःकाल श्रीमद् भागवत के सत्संग में। श्रीमद् भागवत महापुराण के दसम स्कंद के 12वें अध्याय के 36 और 37 श्लोक का आज श्रवण करेंगे। इस अध्याय का नाम है अघासुर का उद्धार। ये भगवान की कुमार अवस्था उनकी लीला का वर्णन है। 4 साल से 5 साल तक भगवान ने बछड़े चराए वत्सपाल के रूप में वृंदावन में। तो ये जब भगवान वत्सपाल के रूप में ब्रज में जमुना के तट पे बछड़े चरा रहे थे उस समय की लीला है। परंतु बीच में ब्रह्मा जी के बछड़े और गाय चराने के बछड़े और ग्वाल बाल चुराने के कारण जो विलंब हुआ समय का, वो 1 साल बीत गया। धरती के समय सारणी से 1 साल का अंतराल हो गया। तो पुनः जब ग्वाल बाल ब्रह्मा जी ने वापस दिए, तब ग्वाल बालों ने वृंदावन में आके अद्भुत कृष्ण की अघासुर उधार की लीला बताई। तो ये कथा बताई 1 साल के बाद, और ऐसे बताई जैसे आज हुआ है। तो ये श्लोक पहले आज हम श्रवण करेंगे। तो ये श्लोक सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, राजन्नाजगरं चर्म सूक्ष्म वृंदावने अद्भुतम्। आप इस लिखा नहीं, ऐसे पढ़े ना पढ़े, राजन्नाजगरं चरम सूक्ष्म वृंदावने अद्भुतम् व्रजकसां बहुतिथम बभूवाक्रीडागहवरम्। सो सुखदेव महाराज कहते, राजान हे महाराज परीक्षित, अजगरम, अघासुर को कहा है अजगर, तो वो अजगर के रूप में आए थे। अजगर चरम, मतलब चरम का मतलब उनका जो बाकी मरा हुआ चमड़ा, चमड़े का जो खोल पड़ा था पूरा। सूक्ष्म वृंदावने अद्भुतम, वो सूक्ष्म का जब सूख गया, जो अजगर के मरने के बाद जो उसका सारा, अब कितना बड़ा अजगर था, कहते उसका ऊपर का जबड़ा बादलों को लग रहा था, और जैसे लग रहा था जैसे कोई बड़ा रोड है, उसका जीभा जैसे रोड जैसे लग रही थी, दांत जैसे पहाड़ों की दोनों तरफ से कतारें हो, श्रृंखलाएं लग रही थी, तो वो जब सूखा होगा तो कितना बड़ा कंदरा बना होगा। तो सूखने के बाद वृंदावन अद्भुतम, वृंदावन में अद्भुत एक पर्यटक स्थल हो गया। वो अघासुर का सूखा हुआ जो खोल बच गया चमड़े का, वो ब्रज कसाम ब्रजवासियों के लिए वृंदावन में अद्भुत बहुत दिनों तक तीर्थ क्या बना, बभू कीड़ा गहवरम, खेलने के लिए बड़ी गुफा बन गई। तो मरने के बाद भी अघासुर के शरीर ने ब्रजवासियों को खेलने का सुख दिया। तो ये श्लोक का अर्थ श्रील प्रभुपाद जी ने यहां लिखा है। हे राजा परीक्षित, जब अघासुर का अजगर के आकार का शरीर सूख कर विशाल चमड़ा बन गया, तो ये वृंदावन वासियों के देखने जाने के लिए अद्भुत स्थान बन गया, और ऐसा बहुत समय तक बना रहा। इसने खेलना लिखा ही नहीं है, उसमें कीड़ा शब्द है, ब्रजवासियों को कीड़ा का स्थल बना, लोग देखने जाते थे क्या है। और विजिट लिखा है देखने के लिए। अब ये श्लोक पढ़ते हैं जो आगे पढ़ा है। इस श्लोक में सुखदेव महाराज अघासुर के सौभाग्य की बात कर रहे हैं, और उसके साथ साथ जो ग्वाल बाल भगवान के संग थे उनका क्या सौभाग्य है, इसका वर्णन कर रहे हैं। तो आइए ये श्लोक पढ़ते हैं। एतत् कुमारजं कर्म हरेरात्महि मोक्षणम् मृत्योः पौगंडके बाला दृष्ट्वा चोरविस्मिता व्रजे। एतत् कुमारजं कर्म हरेरात्महि मोक्षणम् मृत्योः पुंगड़के बाला दृष्ट्वा चोरविस्मिता व्रजे। एते कुमारजं कर्म हरेरात्महि मोक्षणम् मृत्योः पुंगड़के बाला दृष्ट्वा चोर्विस्मिता व्रजे। पढ़ी एतत् कुमारजं कर्म हरेरात्मा अहि मोक्षणम् मृत्योः पुंगड़के बाला
कर्म
हरेरात्मा हि मोक्षणम् भक्त्यः पौगंडके बाला
चूर्विस्मिता व्रजे।
व्रजे एतत् कुमारजं कर्म हरेरात्मा हि मोक्षणम् मृत्योः पुङ्गडके बाला दृष्ट्वोच्वा एतत् कौमारजं कर्म हरेरात्मा हि मोक्षणम् मृत्योः पुङ्गडके बाला दृष्ट्वोचुर्विस्मिता व्रजे। बोलो मैया। एतत् कुमारजं कर्म हरेरात्मा हि मोक्षणम् मृत्योः पुङ्गडके बाला दृष्ट्वा चुरस्मिता विस्मिता व्रजे। एतद् का मतलब इस प्रकार क्या हुआ था। इस प्रकार भगवान ने ग्वाल बालों को भी और अघासुर को भी, दोनों को, अघासुर का उद्धार हुआ क्योंकि उसकी आत्मा प्रवेश हुआ, और जो ग्वाल बाल अघासुर के मुख में चले गए थे, पेट में चले गए थे, जो विष के कारण मृत भी हो चुके थे, मूर्छित थे, मृत जैसे, उनका भी उद्धार किया। तथा कृष्ण के संगियों के उद्धार की ये घटना, अघासुर तथा कृष्ण के संगियों की, प्रभुपाद ने दोनों शब्द लिखे हैं, एतद में दोनों लिखा है, क्योंकि अघासुर को तो उद्धार हुआ लेकिन बालक जो अंदर गए थे वो भी मर चुके थे, उनको भी जीवित किए। और उसके कौमार जन्म कर्म, तो ये कब की लीला है, जब भगवान कौमार अवस्था में थे। 5 साल तक कौमार अवस्था होती है, तो अभी 4 साल में भगवान ने गैया चराना शुरू की थी, तो कौमार अवस्था थी, 5 साल तक की अवस्था में ये लीला हुई थी। हरे हे भगवान को यहां लिखा है हरि, हरि के, हरि मतलब भगवान, हरि के मुख्य दो अर्थ चैतन्य महाप्रभु ने कहे हैं। वैसे हरि के तो अनेक अर्थ होते हैं, एक हरि का अर्थ है अपने प्रिय भक्तों का दुख ताप संताप हर ले। तो यहां तो ब्रज के ग्वाल बाल भगवान के सखा हैं, उनके ऊपर संकट आया तो भगवान ने हर लिया, तो इसलिए हरि, तो हरि। और हरि का दूसरा अर्थ है प्रेम देई मन हरे, पहले कष्ट हरता है फिर प्रेम दे के मन को हर लेता है, तो मनोहर भगवान है, तो हरि का मनोहर कहते हैं, मुरली मनोहर, मुरली बजा के मन हर लेता है। गोपियों का मन हर लिया, गोपियों ने कहा उद्धव हमारे पास मन है ही नहीं, मन तो पहले ही गोपाल ले गया, तो मनोहर, तो मन को हर लेते हैं। और अनेक पाप राशि चोरम, कई जन्मों के पाप की राशि को भी चुरा लेते हैं, हर लेते हैं, इसके लिए उनका नाम है हरि। हरि ने क्या किया, हरेर आत्म अहि, आत्म ही मोक्ष, अहि मोक्षणम, आत्म अहि मोक्षणम, आत्म, आत्म का मतलब भक्त जन भगवान की आत्मा है, आत्म जम आत्म, आत्म मतलब भगवान जिसको अपने समान मानते हैं, भक्तों को भगवान अपने समान मानते हैं, तो आत्मा तो है भक्तों के लिए, इसलिए एतद् के दो अर्थ ऊपर प्रभुपाद ने लिखे हैं। आत्म भगवान भक्तों को अपनी आत्मा के समान सामान्य कहते हैं, लेकिन उससे भी आगे कहते हैं कि मुझसे भी मेरे भक्त मुझे ज्यादा प्रिय हैं। कि कितना बड़ा राम जी शीलवान है कि नीचे पेड़ के भगवान बैठे और वानर ऊपर बैठे, तो इतना बड़ा महान भगवान कौन होगा जो स्वयं नीचे बैठे, अर्जुन ऊपर बैठा है, भगवान घोड़े हांक रहे, ये तो हुआ एक उदाहरण मानव का, लेकिन वानर पेड़ के ऊपर कूद रहे और भगवान नीचे बैठा है, इससे ज्यादा और कौन दयालु होगा। तो जो तो अपने भक्तों को तो अपने से ऊपर ही उठा के रखते हैं, अपनी आत्मा के समान मानते हैं, उनके सुख में सुख लेते हैं। अही अही कहते हैं सांप को, हरे कृष्ण, अही सांप को कहते हैं। तो एक तो अपने बालक साथियों का और दूसरा अही, अही का मतलब अजगर का, मोक्षणम, उनको मुक्त कर दिया। मोक्षणम हरि आत्मा, भक्त जन भगवान की आत्मा है। अहि मोक्षणम, उनका मोक्ष तथा अजगर का मोक्ष। आत्मजम, एक भगवान को जब आत्मा राम कहते हैं तो वहां भगवान की आत्मा किसको कहते हैं? आत्मा राम भगवान यस्य आत्मा राधा, भगवान की आत्मा राधा है जिसमें रमण करते हैं, इसलिए आत्मा राम कहते हैं। भगवान की कोई कामना नहीं है लेकिन फिर भी ब्रज में वो गौ गोप गोपियों के संग क्रीड़ा करने की कामना करते हैं। तो यहां भगवान के जो आत्म शब्द लिखा है, आत्म अहि मोक्षणम, आत्म बहुत बड़ा प्रेम का सूचक है कि भगवान अपने भक्तों से अपनी आत्मा के समान प्रेम करते हैं, उससे भी अधिक प्रेम करते हैं। और मोक्षणम अहि मोक्षणम, उनका मोक्ष तथा अजगर का मोक्ष। वैसे मोक्ष का अर्थ है जन्म मृत्यु से मुक्त करना। बच्चों को तो जन्म मृत्यु से मुक्त नहीं है, वो बच्चों को संकट से मुक्त किया और अजगर को जन्म मृत्यु से मोक्ष किया, दोनों को मोक्ष कहते हैं। वैसे मोक्ष का अर्थ होता है संकट से मुक्त होना, दुख ताप संताप से मुक्त होने को, क्योंकि आगे हरि कहा है तो हरि दुख से मुक्त करता है भक्तों को, और यहां अजगर को जन्म मृत्यु से मुक्त किया। अब अजगर भगवत धाम चला गया तो मोक्षण का अर्थ दोनों के लिए अलग हो जाएगा। भक्त तो अभी मरे नहीं है कि उनको जन्म मृत्यु से, भक्तों का तो संकट से मुक्त किया और अजगर को जन्म मृत्यु से मुक्त किया। मोक्षणम मृत्यु हो, मृत्यु हो जन्म मरण के मार्ग से, किससे मुक्त किया? जन्म मरण के मार्ग से, अजगर को जन्म मरण के मार्ग से मुक्त किया। उसके बाद है पोंगड़ के, पोंगड़ अवस्था कहते हैं 6 साल से 10 साल की अवस्था का नाम है पोंडक, पोंगड़ अवस्था। जैसे पहली 5 साल तक कुमार, 6 से 10 तक पोंगड़, 10 से 15 तक किशोर, और 15 से 20 तक वो हुआ नवयुवक, और उसके बाद जवान हुआ, और फिर तो रोज ही बूढ़ा है, बूढ़ा हो गया अपने आप, फिर बूढ़े में कोई देर नहीं। प्रभुपाद जी को किसी ने आके पूछा कि अभी क्यों भजन करें, हम नौजवान है, जब बूढ़े होंगे तब भजन करेंगे। प्रभुपाद का बूढ़ा किसको बोलते हैं? पर जिसका मृत्यु निकट हो। तो प्रभुपाद का आपको मालूम है, आप ये कह सकते हैं कि आप अभी नहीं मरेंगे? बोला मैं नहीं कह सकता हूं। बोला फिर सभी बूढ़े हैं, पता नहीं कौन किस दिन मर जाए, इसलिए अभी से भजन करना चाहिए, बूढ़ा होने का इंतजार नहीं करना चाहिए, मौत तो किसी वक्त भी आ सकती है। तो अगर बूढ़े की परिभाषा है मरने से पहले तो मौत कभी भी किसी को आ सकती है, इसलिए भजन तो अभी से ही शुरू कर देना चाहिए, उसमें देर नहीं करनी चाहिए। वैसे ही प्रहलाद महाराज ने कहा है कौमारम आचरेत भागवत धर्मान भागवताम ही, ये तो कौमार अवस्था से, मतलब 5 साल के बच्चे से ही भागवत धर्म का जो जो गुरुकुल शिक्षा को कर लेना चाहिए। अरे ठीक है, आवाज आ रहा है, चलेगा। हरे कृष्ण। पौंगड़ बालाह दृष्टो उचुहु, ये जो लीला हुई अघासुर उधार की वो तो हुई कुमार अवस्थाओं में, और बालकों ने आकर ये कही पौंगड़ अवस्था में 1 साल के बाद। 1 साल का अंतराल कैसे हो गया उसकी कथा परीक्षित महाराज पूछेंगे कि आपने कहा कुमार अवस्था में लीला हुई, पोंगल में बच्चों ने बताई, ऐसे कैसे हुआ? क्योंकि ये एक कथा कहने की शैली है कि सामने वाले के अंदर जिज्ञासा पैदा हो, वो पूछे तब विस्तार से उसको बताया जाए तो वो समझेगा, और हम अपनी तरफ से बताते जाएंगे तो उनको लगेगा एक घंटे से बोल रहा है पता नहीं क्या करेगा, तो उनके अंदर जिज्ञासा पैदा करनी। अच्छे से अच्छा शिक्षा की पद्धति, गुरुकुल की शिक्षा पद्धति में सबसे उत्तम पद्धति है संवाद, सम्यक वाद, जिसमें गुरु शिष्य के बीच में प्रश्न उत्तर हो। जब कोई प्रश्न, अच्छा अच्छा अध्यापक कौन है? जो कोई बात बहुत संक्षेप में कहे, जिससे जिज्ञासु में जो शिष्य है उसमें जिज्ञासा पैदा हो, ये गुरुजी कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। जब कोई पूछेगा आप उसको बताओगे तो वो उसको ध्यान से सुनेगा, तो ये एक शैली है। और भागवत के अंदर तो कथा में से कथा निकलती है, महाभारत में कथा में से कथा निकलती है, आपस में कथाओं का, जैसे पहले सुन के आए हैं कि भाई यशोदा मैया ने मंथन करते हुए कृष्ण को बांधा, कृष्ण दो पेड़ों के बीच में से गए, अर्जुन पेड़ों से दो देवता निकले, तो परिषद महाराज वो कौन थे देवता, वो देवता कैसे हो गए? तब दूसरी कथा शुरू हो गई अपने आप कि कुबेर के बेटे थे, नारद के शराब से पेड़ बने थे और भगवान ने उद्धार किया। तो ऐसे कथा में से कथा जिज्ञासा करेंगे, जिज्ञासु शिष्य को जिज्ञासु बना चाहिए, उत्तम जिज्ञासु, उत्तम जिज्ञासु है वो गुरु के पास जाके जिज्ञासा करे। इसलिए भगवत गीता के इस श्लोक में तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन लिखा है, जाके परम सत्य को जानने के प्रश्न पूछना चाहिए, दिव्य जिज्ञासा करनी चाहिए। तो अब ये प्रश्न है कि बालकों ने 6 साल की अवस्था में आके ये कथा बताई तो ऐसे क्यों हुआ, तो आगे वाले अध्याय में आएगा। क्योंकि ब्रह्मा जी ने बछड़े और ग्वाल बाल चुरा लिए थे, तो ब्रह्मा जी के 1 मिनट का, मतलब वैसे जनरली कहते हैं स्वर्ग में 1 दिन होता है और धरती पे 6 महीने होते हैं, स्वर्ग का दिन रात धरती का 1 साल हो जाता है, तो ब्रह्मलोक तो उससे भी ऊपर है, समय का बहुत बड़ा अंतर है। तो ब्रह्मा जी केवल गए और आए इतने दिन में, यहां तो 1 साल बीत गया, वहां का 1 क्षण यहां का 1 साल हो गया। वैसे सामान्य रूप से किसी की मृत्यु हो जाती है तो नियम तो ये है कि एक शरीर छोड़ने से उसको दूसरा शरीर पहले मिलेगा तब ये शरीर छोड़ेगा। आदमी एक जगह छोड़ता है, दूसरी जगह लेता है तब छोड़ता है ना, ऐसे कहे एक पांव जमीन पे रखेंगे तब दूसरा उठाएंगे ना। लेकिन फिर भी 11 दिन तक हम घर में दिया जला के आत्मा का प्रतीक रखते हैं, 11वें दिन जाके उसका संस्कार करते हैं, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि वहां तो 1 दिन लगता है लेकिन यहां उसका समय 11 दिन हो जाता है, अंतर इतना है कि वहां का तो 1 क्षण ही है लेकिन यहां के हमारे हिसाब से, वो होता तो उनके हिसाब से जब, तो ऊपर लोगों के हिसाब से है ना, तो इसलिए 11 दिन का अंतराल, और उसमें आत्मा तो पीछे जो है, आत्मा अगर उधर घर में ही है हमारे हिसाब से तो कथा सुनेगी तो कम से कम उसकी विरक्ति हो जाएगी, मोह से मुक्त हो जाएगा, और पीछे वाले भी कथा सुनेंगे तो उनकी भी आसक्ति कम होगी, तो दोनों के लिए आसानी हो जाएगी। तो 1 साल ब्रह्मा जी के बछड़े चुराने, और विस्मित ब्रजवासियों को मानो उसी दिन की घटना हो, ब्रजे वृंदावन में ऐसे कहा जैसे अभी अभी ये हुआ है। और इससे पहले वाले श्लोक में क्या किया, तो लोगों ने जाके देखा, जब उन बच्चों को ने घर में आके कहा ना कि आज अभी भगवान ने हमको, अब हमारे मित्र कन्हैया ने हमको एक बहुत बड़े अजगर के मुंह से बचाया और अजगर मर गया, तो सब उधर देखने गए तो वो तो सूखा पड़ा था, वो इतना सूखा पड़ा था कि 1 साल बीत गया था, तो दोनों को मिलाएंगे तो बात तो ऐसे की जैसे अभी हुआ है लेकिन जाके देखा तो 1 साल का अंतराल नजर आ गया। तो ये क्यों हुआ, ये विस्मय की बात है। अब श्रील प्रभुपाद का अनुवाद पढ़ते। स्वयं तथा अपने साथियों को, स्वयं तथा अपने साथियों को मृत्यु के बचाने तथा अजगर रूप अघासुर को मोक्ष देने की घटना तब घटी जब कृष्ण 5 वर्ष के थे। इसका उद्घाटन ब्रजभूमि में 1 वर्ष बाद हुआ, मानो ये उसी दिन की घटना हो। श्रील प्रभुपाद ने अनुवाद में लिखा, स्वयं तथा अपने साथियों को मृत्यु से बचाने, यहां जो मृत्यु शब्द है, को उनको मृत्यु से बचाने, इसका मतलब दुख से, संकट से मुक्त किया। और अघासुर का क्या किया? मोक्ष दिया। मोक्ष दिया अघासुर को और संकट से बचाया अपने को और साथियों को। भगवान के ऊपर कोई संकट आ सकता है कि नहीं आ सकता है? अब तात्पर्य पढ़ते हैं। मोक्षनम शब्द का अर्थ है मोक्ष। कृष्ण के साथियों के लिए तथा कृष्ण के अपने लिए मोक्ष का प्रश्न ही नहीं उठता। ये मोक्ष भगवान का कैसे हो सकता है? सबको मुक्ति देने वाले की मुक्ति कैसे होगी? और प्रभुपाद जी के, ये तो आध्यात्मिक जगत में होने से पहले से ही मुक्त हैं। वैसे भगवान के, भगवान का तो, भगवान के लिए तो मुक्ति का शब्द लगता नहीं है, वो तो मुक्ति दाता हैं, नित्य हैं, शाश्वत हैं। लेकिन भगवान के सखा भी भगवान के नित्य पार्षद हैं। ऐसे चेतना चरितमृत में लिखा है, सामान्य रूप से पृथ्वी का भार हरण करने के लिए, असुरों के संहार करने के लिए, भक्तों का भी संरक्षण करने के लिए भगवान गर्भोदक्षायी विष्णु अवतार लेते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी के एक दिन में 28वीं चतुर्युग के द्वापर के अंत में स्वयं भगवान श्री कृष्ण आते हैं। तो भगवान स्वयं जब श्री कृष्ण आते हैं तो उनके अवतार का उद्देश्य असुर संहार भी नहीं होता, धर्म स्थापना भी नहीं होता, मुख्य उनका उद्देश्य होता है अपने साथ गोलोक धाम से अपने सारे नित्य सिद्ध पार्षदों को, अपने साथियों को, अपने से बड़े ब्रजवासी माता पिता गोप गोपियों को और नवयुवक राधा रानी और उसके सखियों गोपियों को धरती के ऊपर साथ लाते हैं। और उनके अवतार का मुख्य उद्देश्य होता है कि सखा लीला, वात्सल्य लीला और मधुर्य लीला करके भक्तों को आकर्षण करना। बाकी जो असुर संहार धर्म स्थापना का काम है, ये भगवान विष्णु का है। इसलिए जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण अवतार लेते हैं तो सारे अवतार उनके श्री विग्रह में समा जाते हैं। इसलिए सिद्धांत ये है कि वसुदेव और देवकी के यहां प्रकट हुए चतुर्भुज रूप में, वो तो है वसुदेव कृष्ण विष्णु उस भाव में, और नंद यशोदा के वहां जो प्रकट हुए वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। और वसुदेव जिस वसुदेव कृष्ण को लाए गोकुल से और गोकुल मथुरा से गोकुल में, वो नंद नंदन कृष्ण में प्रवेश करके समा गया। और भगवान स्वयं श्री कृष्ण कभी ब्रज से बाहर जाते के ऊपर होती हैं। ये कथा यहीं आपको इसका आनंद लेना चाहिए। भुवि भुवि पृथ्वी के ऊपर रसिक भाविक इस कथा को पियो, क्योंकि ये जो भगवान की नंद के आनंद भयो, ये गोकुल में नहीं होता है, गोलोक धाम में नहीं होता है। वहां तो भगवान नित्य किशोर अवस्था में रहते हैं, वहां बाल लीलाएं भी नहीं है। प्रायः वो किशोर अवस्था का, वहां तो भगवान नित्य किशोर अवस्था में रहते हैं, वहां कोई चीज भौतिक है ही नहीं, वहां भौतिकता का प्रवेश ही नहीं है। फिर कहते हैं, इसलिए किंतु अघासुर ने भी कृष्ण तथा उनके भक्तों के सानिध्य से शाश्वत जीवन की वही सुविधाएं प्राप्त कर ली। अब कहते हैं अघासुर, जैसे सनातन गोस्वामी पाद ब्रज भागवत अमृत में, भाई कुश्ती कर रहे हैं तो आलिंगन कर रहे हैं ना, ये तो सखाओं को भी नहीं मिलता है, गोपियों को भी नहीं मिलता है, तो भगवान ने इनके ऊपर कितनी कृपा की, और अघासुर को देखो उनके शरीर के अंदर प्रवेश करके चले गए, अपने अंदर पूरे का पूरे ही अंदर चले गए। और भगवान शरीर में चले गए तो भगवान ने कहे या यथामाम, ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यम, ये मेरे शरीर, मैं इसके शरीर में गया हूँ, ये मेरे शरीर में आ जाए तो उसको अपने शरीर। पूतना उधार की लीला, अघासुर लीला ये सिद्ध करती है कि भगवान भगवान होते हैं, भगवान बनने की जरूरत नहीं है। जैसे मायावादी कहते हैं आप आवरण का भंग करके ब्रह्म बन जाओ, ऐसा नहीं है। अब 6 दिन के भगवान बालक ने होंठों से इतनी बड़ी 12 कोस की पूतना का प्राण कैसे निकाल लिया, ये भगवान को कैसे है कि अघासुर ये आया है तो इसके मुख के अंदर जाके इसका सर फाड़ना है, और केसी आया है तो उसके मुख में हाथ डालना है, आन मिलता है तो मेरे भक्तों का क्या कहना। जब पूतना को धात्री गति देते हैं तो जिन गायों ने प्रेम से भगवान को दूध पिलाया, जिन गोपियों का 1 साल तक भगवान ने दूध पिया, जब ग्वाल बाल बन गया, गायों का दूध पिया, सारी गायों का दूध पिया, पूरे ब्रज की गायों का दूध पिया भगवान ने, क्योंकि ब्रह्मा जब बछड़े चुरा के गए, ग्वाल बाल चुरा गए तो कृष्ण ही तो ग्वाल बाल बछड़े बन गए, तो 1 साल तक जो उनका। और दूसरा, भगवान सायुज्या मुक्ति तो दूर से अपने में समा देते हैं ब्रह्म में, वो तो ठीक है, लेकिन इसको तो सारूप्या मुक्ति दे दी। वैकुंठ में 4 हाथों वाला जय विजय जैसा रूप, भगवान नारायण जैसा रूप दे दिया, ये भी बहुत विलक्षण है। और फिर जब किसी को भगवान मुक्ति देते हैं तो उसका ये मुक्त शरीर भी दिखता नहीं है, लेकिन ये तो देवताओं ने देखा, उसकी आत्मा को बाहर देखा, प्रवेश होते हुए देखा, और चतुर्भुज रूप में राम जी के मन में आया था हनुमान इतना बड़ा काम करके आया है, मैं इसको कुछ दे दूं, लेकिन दें क्या, कुछ भी नहीं था, ये वनवास में क्या दूं, बोले आलिंगन दे सकता हूं बस। हाँ, तुम मेरे भरत सम भाई, जो छाती जिसके ऊपर आलिंगन करने का केवल किशोरी सीता को अधिकार है, उसको आलिंगन हनुमान जी को दे दिया, और क्या कुछ है नहीं, कुछ दिया क्या भाई, वनवास में क्या दे, वैसे तो देने को सब कुछ दे सकते लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं, लेकिन आलिंगन दे सकता हूं। भावना अमृत संग में श्री रूप गोस्वामी की शिक्षाओं के अंतर्गत होती है, हम सब रूप अनुगा है, ये भक्ति, इस भक्ति का नाम है राग अनुगा भक्ति। ये साधन भक्ति जो हम कर रहे हैं, ये साधन भक्ति राग अनुगा भक्ति है। राग अनुगा भक्ति वाले ही केवल गोलोक में जा सकते हैं, सामान्य भक्ति वाले अगर भक्ति करके प्रेम प्राप्त करें तो भी वैकुंठ तक ही उनका भक्ति है। तो इसका मतलब है जो ऐसे भक्त सिद्ध होके भगवान के पार्षद बनते हैं, वो वहीं से आते हैं। छह गोस्वामी जिन्होंने वृंदावन को जिनको श्री चेतन महाप्रभु ने ब्रज में भेजा, ये सब तो भगवान के पार्षद मंजरियां हैं, गोपियां राधा रानी की सखियां हैं, वो तो ध्यान करना चाहिए, ऐसा वस्त्र पहनना, ऐसे काम करना, उसके पीछे खड़ा होना चाहिए, क्योंकि उसके अनुगत होगा तब वो सौभाग्य प्राप्त होगा। और उसके नीचे लिखा है ऐसे जो जो जिस भाव का भक्त है, एक कोई भक्त चुन ले भगवान का नित्य पार्षद, कोई सखा भाव का है तो शबल सखा को चुन ले, कैसे कपड़े पहनता है, कैसे भगवान के संग खेलता है, उसकी उसका ही चिंतन करे। कोई माँ के लिए कहा है, किसी एक के लिए नहीं, सबके लिए, सबका सुहृद है भगवान। श्रील प्रभुपाद के भक्त विष्णुजन स्वामी महाराज जब प्रचार करने जाते थे बड़े महानगरों में, तो अपने भक्तों को कहते देखो देखो ये महानगर अघासुर का पेट है, और इसमें गए तो ये संस्कृति सबको निगल जाएगी, इसलिए ये ग्वाल बालों की संगा याद करो कि कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे, ग्वाल बाल ये कहे तुमके संग में, तो ये प्राकृतिक आनंद का विषय है। लेकिन अभी न गैया है न चराने वाले हैं तो काम कैसे चले, तो पुनः ऐसी संस्कृति को कैसे स्थापित किया जाए, श्री प्रभुपाद की ये हार्दिक इच्छा थी कि हर मंदिर स्वालंबित हो, स्वतंत्र हो अर्थव्यवस्था के विश्वास पैसे ने खराब कर दिया है। पैसा नहीं था तब ये समस्या नहीं थी, पैसा आया है तब ये सब समस्या हो गई है। इसलिए मानो अगर आप इतने महानुभाव भगवान श्री राधा गोविंद की सेवा में यहाँ गौर निताई में जुड़े हो, एक मन में संकल्प करके योजना बनाओ कि अपने को कहीं कुछ धरती का टुकड़ा रखना है, अपनी गैया यहाँ रखी हुई है। यहाँ गैया बेचारी खड़ी तो है लेकिन गैया जब तक घूमती नहीं है तब तक उनको सुख नहीं मिलता। गैया आया इतना तो हमारे पास गाय भैंस बकरी है नहीं जितना दूध मार्केट में आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। पहले जमाने में आपको कभी 10 किलो दूध चाहिए था तो 2 दिन पहले कहना पड़ता था, अब 50 किलो 5 मिनट में आ जाता है, कैसे बनता है। क्या इसका कहने का अर्थ है कि हम अपने बच्चों को जहर खिला रहे हैं रोटी के नाम में, इससे अच्छा है कि अपने उत्पादन करें और मंदिर को अपना स्वलंबित एक धरती का टुकड़ा, अपनी गाय, उसका अनाज उत्पादन। प्रथम भगवान की आवश्यकता की चीजें पूरी करो, फिर आपकी पूरी करो, तो बहुत सुखी रहोगे, बच्चे कम से कम स्वस्थ तो रहेगा। पहले कहावत ये थी चरित्र ज्ञात ना, पहले ये कहावत हुआ गई क्या करती, धन गया तो कुछ भी नहीं गया, ये तो हाथ का मैल है फिर आ जाएगा। स्वस्थ गया तो कुछ खराबी हो गई, चलना फिरना मुश्किल, स्वयं संकट में दूसरे संकट में, और चरित्र गया तो सब कुछ सत्यानाश हो गया। गोविंद देव का भूमि है वहां से अन्न आता है, आज तो कोई काम नहीं करता है, किसी को दे दिया है बाहर को, होना ये चाहिए। और दूसरा ये कि एक बीमारी आजकल के एक ही बच्चा पैदा करेंगे, हमसे पाला नहीं।